दौला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं जय उधरसेननाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुडसेलो बुद्धि शिरेणुद्धरियो समप्यो फुफदंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें अभी अपना द्वितीय खंड चल रहा है, खुद्दाबंध नाम है इसका, और ये सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 153 पर हम आ गए। 153। एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपणा चल रही है हमारी मार्गणाओं में। हाँ, तो योग मार्गणा की बात हमने देखी थी, मनोयोगी और वचन योगियों की बात देखी थी, याद है कि मनोयोगी का अच्छा था। देख लो योग मार्गणा की अपेक्षा पहले 5 मनोयोगी, क्योंकि एक सामान्य भेद लिया और फिर सत्य असत्य उभय अनुभय, तो इनका काल कितना है, तो जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त। एक समय कैसे, जैसे मरते समय कोई काय योग में से मान लेते मन योग में आया, एक समय में मरण हुआ, मरण की अपेक्षा एक समय, और व्याघात की अपेक्षा। व्याघात इसको कहते हैं, काय योगी से मनोयोग होगा और एक समय में पलट कर फिर काय योग हो गया। ये मनोयोग और वचन योग में ही व्याघात हो सकता है, काय योगी का तो काय योगी ही रहेगा। तो इसमें तो एक समय का मरण की अपेक्षा और व्याघात की अपेक्षा, काल एक समय, काय योगी में भी जघन्य एक समय हो सकता है मरण की अपेक्षा, नहीं काय योगी में मरण की अपेक्षा भी नहीं होता, अंतर्मूर्त रहता है, क्योंकि वो कारमाण काय योग और मिश्र काय योग हो जाता है ना, तो मरण की अपेक्षा भी एक समय नहीं घटित होता वहां पर, अंतर्मूर्त ही है जघन्य और उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल पर होता है, क्योंकि एकेंद्रिय में रहने से तो काय योग का काय योग रहेगा। इस तरह से उसकी बात कल अपनी हुई थी। अब औदारिक कायोगी बताएंगे। देखो औदारिक कायोग तो मनुष्य और तिर्यंचों के होता है, एक बात, जहां 2 योग या 3 योग होते वहां तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता, परंतु लगातार लंबे काल तक औदारिक कायोग किसको होगा, तो एकेंद्रियों के होगा। पर एकेंद्रियों में बात है कि जहां जन्मता है तो पहले में पहले विग्रह गति मोड़ वाली होगी तो कारमाण कायोग होगा, फिर औदारिक मिश्र तो होगा ही होगा हर एक जीव को, फिर औदारिक कायोग में आएगा जब शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, यानी एकेंद्रिय का एक भव हम उत्कृष्ट ले सकते हैं, कुछ कम अंतर्मूर्त कम। तो ऐसा आपको कोई मालूम है एकेंद्रिय का? हाँ, पृथ्वी कायिक, जो खर पृथ्वी कायिक होते हैं उनके 22,000 वर्ष की आयु होती है। तो अभी यहाँ हम पढ़ेंगे 153 पृष्ठ पर 102 नंबर का सूत्र है, ओरालिय काय जोगी केवचिरम कालादो होदी। जीव औदारिक कायोगी कितने काल तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्येन एक समय, जघन्य से एक समय तक, वो क हुआ है समक हुआ है, समय तक जीव औदारिक कायोगी रहता है, क्योंकि मनोयोग अथवा वचन योग के साथ रहकर उनके कालक्षय से यानी उनका अंतर्मूर्त पूरा हुआ औदारिक काय योग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में मरकर योगांतर को प्राप्त हो, यानी कारमाण काय योग हुआ या औदारिक वैक्रिक मिश्र हुआ, काय योग वो पूरा काय योग लिया था, काय योग में कारमाण काय योग औदारिक मिश्र वैक्रिक मिश्र सब इंक्लूडेड है। हम पृष्ठ संख्या 153 पर है, 153। हाँ, यहाँ प्रश्न ये पूछा गया था कि जीव औदारिक कायोगी कितने काल तक रहता है। उत्तर में बताया कि जघन्य से एक समय तक रहता है। हमने काय योग का जघन्य काल अंतर्मूर्त देखा था, क्योंकि औदारिक काय योग से वो कारमाण हो जाएगा, औदारिक मिश्र या वैकरिक मिश्र हो जाएगा। समझ में आते ना, औदारिक काय योग की बात है। तो मरण के समय एक समय औदारिक काय योगी हुआ, दूसरे समय में मरकर मिश्र काय योगी होगा। रुजु गति के गति से जाएगा तो डायरेक्ट मिश्र काय योग होगा, और विग्रह मोड़ वाली जाएगा तो कारमाण काय योग होगा। परंतु औदारिक काय योग नहीं रहा। काय योग के अभी जो भेद है उसको उसमें अभी इंक्लूड नहीं करना। पहले तो सबको इंक्लूड करके हमने काय योग कहा था। तो जघन्य से एक समय तक रहता है, क्योंकि फिर पढ़ते मनोयोग अथवा वचन योग के साथ रहकर उनके कालक्षय से उसका अंतर्मूर्त पूरा हुआ औदारिक काय योग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में मरकर, एक समय के लिए औदारिक काय योगी हुआ और फिर मर गया, योगांतर को प्राप्त हुए जीव के, योगांतर इसलिए लिया किसी के कारमाण का योग होगा और रुजुगति से जाने वाले के औदारिक मिश्र या देवनरक में जाने वाले वैकृत मिश्र होगा, इसलिए योगांतर ने अन्य योग को प्राप्त हुआ। योगांतर का अर्थ होता है अन्य योग को प्राप्त हुए जीव के एक समय काल देखा जाता है। अब उत्कृष्ट बताएंगे, उक्कसेन बावीसम वास सहस्राणी देशुनाणी। उत्कृष्ट से यहाँ कुछ कम लिखना चाहिए। 22,000 वर्षों तक जीव औदारिक कभी रह गया, काय योगी रहता है, उसमें कुछ कम लिखा है क्या? नहीं, हाँ डालो उसमें, क्योंकि मूल सूत्र में है ना, देशुनानी किंचित ऊन, उसका अर्थ होता है किंचित कम, कुछ कम। 22,000 वर्षों तक जीव औदारिक कायोगी रहता है। अभी उसका कारण बताएंगे, क्योंकि 22,000 वर्ष की आयु वाले पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न होकर सर्व जघन्य काल से औदारिक मिश्र काल को बिताकर, सर्व जघन्य काल क्योंकि उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट का वेरिएशन होता है। औदारिक मिश्र कब तक है? तो जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक। ये पर्याप्तियों को पूरा करने का काल भी जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से अलग अलग हो सकता है, इसलिए लघु काल में उसने पूरा किया तो वो 22,000 में से माइनस किए हुआ प्रमाण थोड़ा हुआ, यानी वो अधिक औदारिक काय योगी में रहा। अब एक इंद्रिय में अन्य कोई काय योग, अन्य कोई योग है ही नहीं है। औदारिक मिश्र के बाद पूरी लाइफ टाइम तक वो औदारिक काय योगी रहेगा, इसलिए एक भव लिया पृथ्वी काय का। तो अंतर्मूर्त कम यहाँ लिखा ना, देखो फिर से पढ़ते, 22,000 वर्ष की आयु वाले पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न होकर सर्व जघन्य काल से औदारिक मिश्र काल को बिताकर पर्याप्ति को प्राप्त होने के प्रथम समय से लेकर, ये पर्याप्ति को प्राप्त यानी शरीर पर्याप्ति, ऊपर कुछ लिखा है पज्जतिम गद, उसके और कौन सी पर्याप्ति होगी बोलो? हाँ श्वासोश्वास पर्याप्ति है ना, कितनी कितनी पर्याप्ति होगी उसके? हाँ बोलो, पर्याप्ति के नाम, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, अरे इंद्रिय पर्याप्ति भूल गए, और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, चार पर्याप्ति है ना। तो शरीर पर्याप्ति को प्राप्त होने के पहले समय, ऐसा उसका अर्थ लेना, तभी से औदारिक कायोग चालू हो जाता है। पेज नंबर 153 है, एकदम नीचे आएंगे हम। अब पूछते हैं, ये औदारिक कायोगी की बात हो गई, ओरालिय मिस्स काय जोगी, वेयुवीय काय जोगी, आहार काय जोगी, केवचिरम कालादो हो दी। अब क्या क्या लिया देखो, जीव औदारिक मिश्र काय योगी, वैकृत काय योगी और आहार का योगी कितने काल तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। जघन्येन एक समो, जघन्य से एक समय तक जीव औदारिक मिश्र का योगी आदि रहता है। अभी कोई बोले नहीं, प्रेरणा बिना आप बताओ औदारिक मिश्र में एक समय कैसा होगा। उन्होंने बता दिया, अरविंद भाई जैसी साइन करके बता दी। विग्रह गति में कारवाण का योग होता है। उन्होंने वही कहा कपाट से मुद्गात में। बहुत अच्छा, इस सहयोग केवली के कपाट समुद्घात में एक समय हो सकता है। अभी हमने पेज पलटा नहीं, वो हम बताएंगे शायद, है ना। वैक्रिक का योगी और आहारक का योगी, तो औदारिक मिश्र का योगी आदि में उसको ले लेना। जैसे वैक्रिक का योगी में ऐसा लेना है कि जीव मनोयोग से वैक्रिक का योग में आया, एक समय में मरण हो गया, अब वैक्रिक का योग तो नहीं रह गई, उसके बाद उसको औदारिक मिश्र ही होना है या कारमाण होगा। उसके लिए दो ही रास्ते, अभी मनुष्य तिरेंज में तो आएगा ही आएगा। वो आहार का योगी का भी ऐसा लेना, वहां पर भी मनोयोग वचन योग होते हैं, मनोयोग वचन योग से आहार का योग में आया, उसके बाद क्या होगा, औदारिक का योग चालू हो जाएगा, इसलिए एक समय घटित हो जाता है। हाँ सब है, छह पर्याप्ति होती है उनके भी, यानी आहारक का जो शरीर बनाया है वहां पर भी मनोयोग वचन योग आहारक का योग तीनों पलट कर होते हैं। स्टार्टिंग में तो आहारक मिश्र हुआ, आहारक मिश्र के बाद आहारक संबंधी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई तब आहारक का योग चालू हुआ, फिर वो मनोयोग वचन योग, यानी इतना छोटा काल में भी कितने छोटे, यानी वो योग का काल कितना छोटा होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ 154 पर उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे, औदारिक कायोग को अविनाभावी दंड समुद्घात से, अविनाभावी ने औदारिक दंड समुद्घात में तो औदारिक कायोग ही होता है, दंड समुद्घात से कपाट समुद्घात को प्राप्त हुए सयोगी जिन में, यानी दंड के बाद कपाट होता है ना, दंड समझते क्या है, देखो केवली समुद्घात होता है तो चार स्टेप्स होते हैं उसके। पहले तो मुनिराज बैठे हैं जहाँ कहीं पर भी ढाई द्वीप में, जहाँ अभी उनके समुद्घात होना है, तो पहले क्या होता है, जैसे कोई पद्मासन से है कोई खड़गासन से है, तो जितनी उनके ऐसी एरिया उतना दंडाकार खंभे जैसा ऊपर से नीचे तक, कितना वात वले को छोड़ देना दोनों ओर से, और वहां तक उसके जो आत्म प्रदेश फैले रहते इस तरह से, पूरे त्रसना, इन्हें लोग त्रसनाली पूरी नहीं होती, उनके जो देह प्रमाण है ऐसे होगा ना, ऐसे बैठे हैं तो जरा ब्रॉड हो जाएगी आत्मप्रदेश, और खड़े हैं तो थोड़े ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसे ये दंड हो गया, ऊपर और नीचे का वात वाले छोड़ दो। दूसरे समय में क्या होगा, ऐसा है ना, तो इस तरह से लोकाकाशीय अंत उसको कहेंगे कपाट, वो कैसे हो जाएंगे, यदि पूर्व की तरफ मुंह है तो सर्वत्र दक्षिणोत्तर सात राज्य हो जाएंगे, और अगर उत्तर की तरफ मुंह है तो जैसा हम लोकाकाश का आकार बताते वैसे उनके इतने ब्रेड वाला ऐसे आड़ा फैल जाएगा, तो उसको कहेंगे हम कपाट समुद्घात। फिर तीसरे समय में क्या होगा, ऐसे आड़े फैले ऐसे भी लोकाकाश के अंत तक फैलेंगे, यानी अभी क्या प्रतर इसको कहते हैं, यानी लोकाकाश का जो अंतिम जो वात वाले चहु ओर के उसको छोड़कर वहां तक फैले है। लोक पुराण में क्या होता है, वो वात वाले उन सहित सर्वत्र फैल जाते हैं, पूरे लोक प्रमाण एक आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। फिर वैसे समेटने में प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, फिर मूल शरीर में, यही कह रहे हैं आप कि जब दंड में थे तभी औदारिक का योग था, ये नियम से था इसलिए अविनाभावी कह दिया। कपाट समुद्घात को प्राप्त हुए सयोगी जिन में, सयोग केवली की बात है, औदारिक मिश्र का एक समय काल पाया जाता है, अन्यथा कोई भी भले लब्धि पर्याप्त हो कोई भी है, एक समय में औदारिक मिश्र होता ही नहीं उनके, क्षुद्र भव जितना तो उनका तो अवतारिक मिश्र चलेगा। अब ये सम केवली की बात करें, क्योंकि उस अवस्था में अवतारिक मिश्र के बिना अन्य योग नहीं पाया जाता, ये नियम है वहां पर। अब वैक्रिक का योग की बात आपने पूछी थी ना एक समय कैसे, तो ये बता रहे मनोयोग या वचन योग से वैक्रिक का योग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के वैक्रिक कायोग का एक समय काल पाया जाता है। जैसे देव है मनोयोग से कायोग में आया, एक समय बिताया और दूसरे समय में मनुष्य हुआ, तो वहां कारवान का योग या औदारिक मिश्र का योग चालू हो जाएगा उसका, मरण की अपेक्षा। क्योंकि मर जाने के प्रथम समय में कारवान का योग, औदारिक मिश्र का योग और वैक्रिक मिश्र का योग को छोड़कर वैक्रिक का योग पाया नहीं जाता। यहाँ वैक्रिक मिश्र क्यों लिया, यानी इन जनरल सबके लिए बात। मरण की अपेक्षा जैसे मरकर कोई देव होता है तो उसके लिए वैक्रिक मिश्र हो जाएगा, पर यह अभी वैक्रिक का योग मरकर वैक्रिक का योग में नहीं है, वैक्रिक मिश्र में नहीं आएगा, ये नक्की है। मनोयोग अथवा वचन योग से अभी आहारक कायोग की बात करेंगे। आहारक कायोग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए या मूल शरीर में प्रविष्ट हुए जीव के, मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे तो औदारिक हो और मर जाएंगे तो क्या होगा, हाँ कारमान या वैक्रिक मिश्र, औदारिक मिश्र नहीं होगा क्योंकि मुनिराज है ना, मरकर तो देव में ही जाएंगे। तो उसके आहार कायोग का एक समय पाया जाता है, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त और मूल शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के प्रथम समय में आहार कायोग नहीं पाया जाता। क्या पाया जाएगा हमने देख लिया। अब इन्हीं का उत्कृष्ट बता रहे कौन कौन से तीन योग हमने देख रहे, औदारिक मिश्र, फिर वैक्रेक और आहारक। आप कहेंगे लब्धि अपर्याप्त में लगातार रहता रहेगा, चालू रहेगा तो भी कितने काल तक रहेगा औदारिक मिश्र, अंतर्मूर्त, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त लगातार होता रहे तो भी अंतर्मूर्त ही रहता है। हमने देखा ना एक अंतर्मूर्त में मैक्सिमम 66,336 सभी की बात, 132 तो एक इंद्रिय की बात है। तो यहाँ बता रहे उपकस्य न अंतोमोत्तम, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक जीव औदारिक मिश्र कायोगी आदि रहता है, क्योंकि मनोयोग अथवा वचन योग से, वचय हुआ है वचन योग से वैक्रिक या आहारक काय योग, काल योग हुआ है काय योग, क्या कहते हैं मनोयोग या वचन योग से वैक्रिक और आहारक की बात पहले उठाई, उसको प्राप्त होकर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल तक रहकर, योग का काल भी हीनाधिक हो सकता है, हाँ अन्य योग को प्राप्त हुए जीव के अंतर्मूर्त मात्र काल पाया जाता, इससे अधिक वो नहीं रहेगा। तथा अविवक्षित योग से यानी अन्य योग से औदारिक मिश्र योग को प्राप्त होकर, अन्य योग से यानी कोई मर गया, औदारिक वाला मर गया और औदारिक मिश्र में आ गया तो उसको क्या होगा, औदारिक मिश्र को प्राप्त होकर तथा सर्वोत्कृष्ट काल तक रहकर, सर्वोत्कृष्ट कैसा रहेगा औदारिक मिश्र ने, औदारिक मिश्र अवस्था में कौन मर सकता है पहले ये नक्की करो, पर्याप्त जीव मर सकता है कि लब्धि अपर्याप्त मरेगा, लब्धि अपर्याप्त ही मरेगा, उसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उसके पहले उसका आयु बांधना मरण सब उसी में हो जाता है, उनके कोई अन्य योग ही नहीं है, होगा तो कारमाण का योग और बाद में औदारिक मिश्र, तो औदारिक मिश्र में से अभी उसको लंबा काल लेना है तो उसको रुजुगति से भेजना पड़ेगा बिना कारमाण का योग किए, तो रुजुगति से लगातार उसके भव हो गए कितने, मैक्सिमम 66,336, वो सब मिलकर भी उसका अंतर्मूर्त काल है। बाद में नियम से अभी मिश्र वाला कहाँ कौन से योग में चला जाएगा, या तो कारमान में चला जाएगा और कारमान करके उसके फिर औदारिक मिश्र होगा, क्योंकि पर्याप्त में तो जन्म लेगा वो, फिर औदारिक मिश्र करके औदारिक होने वाला है, पर बीच में उसका कारमान का योग होगा अभी, फिर पर्याप्त में जन्म लेगा ही नियम से, क्योंकि अपर्याप्त भव लगातार उसके हो गए। देखो अब कहते अविवक्षित योग से औदारिक मिश्र योग को प्राप्त होकर तथा सर्वोत्कृष्ट काल तक रहकर अन्य योग को प्राप्त हुए जीव के औदारिक मिश्र का अंतर्मूर्त मात्र उत्कृष्ट काल पाया जाता है। शंकाकार पूछते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तों में और बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों में 7-8 भव ग्रहण तक निरंतर उत्पन्न हुए जीव के बहुत काल क्यों नहीं पाया जाता? समाधान, नहीं, क्योंकि उन सब स्थितियों को इकट्ठा करने पर भी उनका योग अंतर्मूर्त मात्र काल होता है। ये 67 देखो, यहाँ पर ये जो 7 और 8 लिखा है ना ऊपर प्राकृत में, देखो 155 पर फर्स्ट लाइन प्राकृत की 67 भवक गहनानी लिखा है ना, उसके लिए एक लिखकर फुटनोट में लिखते अन्य प्रति में भवक गहनानी इति पाठ है, यानी वो 67 वो शब्द वहां नहीं है, क्योंकि 7 ही 8 ही इतने ही, यानी पर्याप्त 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 ये सब उसका कहना है, यानी सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त पर्याप्त नहीं, सूक्ष्म एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय के अपर्याप्तों में नहीं, नहीं नहीं निकालना, इस प्रति में है इसलिए उन्होंने लिखा है, और नीचे दूसरी प्रति में केवल भवक ग्रहणा नहीं है, यानी अनेक भव ग्रहण करता है, क्योंकि हमने देखा है कितने भव ग्रहण कर सकता है, फिर भी ये जो हमने 66,336 भी देखे थे उतने करने पर भी अंतर्मूर्त से अधिक काल नहीं बिताता,
वो सबका मिलकर
नहीं, ये तो प्रश्न उन्होंने सूक्ष्म और एकेंद्रीय की पूछा था, उसमें भी सूक्ष्म और बादर एकेंद्रियों में 66,132 भव होते हैं। जरा जोर से बोलो,
अपर्याप्त का कितना भी भव ले ले उससे भी पर्याप्ति का काल बड़ा होगा।
हाँ, पर्याप्ति में बड़ा होगा, अभी ऐसी कंपैरिजन नहीं किए सभी अपर्याप्तों का मिलकर और पर्याप्ति का अकेले का, वो तो सभी अपर्याप्तों का मिलकर ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा अल्पभूतव नहीं हमने देखा है। अब वेयुवीय मिश्र काय योगी 155 पेज मिश्र काय योगियों की बात करें, वेयुवीय मिश्र काय योगी आहार मिश्र काय योगी केवल चिरम काला दो हो दी, 109 नहीं 108 सूत्र है, सूत्र नंबर 9 के बदले 8 करो, उसमें क्या है 8 लिखा है, नीचे भी 110 का 9 करो, 108 का नीचे 8 हुआ उसको 10 करो, उल्टा पुल्टा हुआ है ना। तो प्रश्न क्या पूछा, देखो जीव वैकृत मिश्र का योगी और आहार मिश्र का योगी कितने काल तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। पहले तो उन्होंने वैकृत का योग और आहारक का योगी लिया था, अब मिश्र को ले रहे, क्योंकि उसमें देखो अभी कैसे सोचना है, औदारिक मिश्र में तो एक समय केवली की घटित कर दिया, वैकृत मिश्र कब होता है तो मनुष्य तीरंच मरकर देव में उत्पन्न हुआ या नरक में उत्पन्न हुआ, तो वहां औदारिक मिश्र होगा, कब तक, शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक। तो क्या वहां कोई जीव मर सकता है शरीर उस अवस्था में, क्योंकि वो पर्याप्त जीव है, देव और नार की पर्याप्त होते हैं, वहां कोई लब्धि पर्याप्त नहीं होते, और होते तो भी वो हमने देखा था उसको भी अंतर्मूर्त तो लगता ही है, तो यहाँ एक समय कभी भी घटित नहीं होगा, अंतर्मूर्त तो घटित होगा, उसमें मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस है। तो कहते जघन्य न अंतोमोत्तम, जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक जीव वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी रहता है। शंकाकार, यहाँ एक समय जघन्य काल क्यों नहीं प्राप्त होता? देखो आहारक मिश्र के लिए प्रश्न पड़ता है कि आहारक मिश्र शुरुआत किया और एक समय में मरण हो गया तो, पर आहारक मिश्र अवस्था में मरण नहीं है ऐसा एक मत है, इसलिए पूछा कि एक समय क्यों नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ मरण और योग परावृत्ति का होना असंभव है। योग परावृत्ति ने योगों का पलटना। उक्कस्य न अंतोमूर्तम, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक जीव वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी रहता है, क्योंकि उसका जो पर्याप्ति पूरे होने का जो काल है वो तो हीनाधिक हो सकता है, तो उसमें उत्कृष्ट काल ले लेना। यह सूत्र सुगम है। कम्म काय योगी केव चिरम कालादो हो दिए, जीव कार्मण का योगी कितने काल तक रहता है? जो कार्मण का योग कहाँ तो होता है, एक तो विग्रह गति में होता है और केवली के होता है समुद्रात में, वहां तो तीन समय होता ही है, है? और विग्रह गति में भी सूक्ष्म एक इंद्रियों के हो सकता है। 156 पृष्ठ पर आते हैं। सुगमम, यह सूत्र सुगम है। अब उसका समय बताएंगे। जहन्ने न एक समो, जघन्य से एक समय तक जीव कार्मण का योगी रहता है, क्योंकि एक विग्रह करके, विग्रह ने मोड़ा, ये मोड़ वाली गति को विग्रह गति कहते हैं और बिना मोड़ वाली को रुजु गति कहेंगे या अविग्रह ऐसा भी कहेंगे उसको। तो एक विग्रह करके उत्पन्न हुए जीव के एक समय करो, एक साथ नहीं, एक समय काल पाया जाता है। उसमें क्या लिखा है? एक साथ नहीं, एक समय, साथ का समय करो और पीछे सारे करेक्शंस लिख दो। उक्कस्य न तिन्नी समया, उत्कृष्ट से तीन समय तक जीव कार्मण का योगी रहता है, क्योंकि तीन समयों से अधिक विग्रह पाए नहीं जाते। विग्रह गति में तीन से ज्यादा मोड़ नहीं लेने पड़ते। ये पूरा एक क्यूबिकल अगर होता लोकाकाश, कहीं से भी कहीं जाने के लिए उसको दो ही मोड़ लगते। त्रसनाली में से ही उसको रहना है तो उसको दो मोड़ से ज्यादा मोड़ नहीं लेने पड़ते। सोचो ये ऐसा क्यूबिकल हॉल है, अब यहाँ मरा कोई और उस कोने में जन्म लेना है, उसको स्ट्रेट लाइन में जाना है, ऐसा गया राइट एंगल में ऊपर चढ़ गया 90 डिग्रीज का करके और फिर और एक राइट एंगल, दो ही मोड़ लगते हैं उसको। कहीं पर भी आप सोच के देखो, किसी पॉइंट से भी किसी पॉइंट तक के भी, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। परंतु क्या है, लोकाकाश कैसा है, बाहर ऐसा है, फिर आया है अंदर, फिर नीचे गया है बाहर, या आगे पीछे भी त्रस नाली को छोड़कर बाजू में तीन तीन राजू की तो एरिया रहती है ना, दक्षिणोत्तर भी अगर आप इमेजिन करो तो वहां का कोई दक्षिण या उत्तर त्रसनाली के बाहर के जीवों को, और फिर त्रसनाली में आना पड़ेगा, ऊपर चढ़ के फिर बाहर की ओर जाना है उसको, बाहर उसका जन्म है तो फिर बाहर ले जाना पड़ेगा, और फिर एग्जैक्ट उसी लाइन में नहीं ना, पूर्व या पश्चिम की ओर फिर मुड़ना पड़ेगा, तो उसको तीन मोड़ ले सकता है ऐसे जीवों को, उससे अन्य जीवों को नहीं हो सकता। यानी एक इंद्रिय में से त्रस में आने वालों को भी तीन मोड़ नहीं लगते, नहीं, यानी त्रसनाली के बाहर वाला फिर त्रसनाली के बाहर उत्पन्न होना है तो ही उसको ऐसा लगे। अरे बाहर लोकाकाश के बाहर से कैसे जाएगा वो? हाँ, ख्याल में आती है ना, बाहर उसका लेना है फिर प्रोजेक्शन उसका। इन्हें मान लेते ना, देखो ये पैसा भी है। मान लेते नेत्रस नाली है और लोकाकाश ऐसा दक्षिणोत्तर सात राज्य फैला हुआ है, पूर्व पश्चिम में ऐसा हिनादिक है, यहाँ वाला कोई जीव है तो उसको ऊपर जान, यहाँ तो बीच में एक इतना ही है ना, नहीं यहाँ से नहीं, ऐसा ही है, ऐसा एक ही राजू है, ऐसा है बाहर, तो यहाँ बाहर है उसका, परंतु उसको उस पार जाना है और उस पार जाकर और पूर्व पश्चिम में अन्य दिशा में जाना है, तो उसके लिए उसको एक मोड़ और लेना पड़ता है। केवली समुद्रात और विग्रह गति में तीन मोड़, हाँ क्योंकि यहाँ तो विग्रह गति की बात की उन्होंने, तीन समयों से अधिक विग्रह मोड़े पाए नहीं जाते और केवली के भी तीन समय तक हैं, यानी समुद्रात केवली के भी तीन समय होते हैं, तीन समय तक कारमान का योग। अब ये हो गए वेद मार्गणा की बात चलेगी, योग मार्गणा के बाद वेद मार्गणा। वेद मार्गणा में जब जीवों के भेद करेंगे तो कोई वेद सहित है कोई वेद रहित है, तो वेद सहित वालों में कोई स्त्री वेदी है कोई पुरुष वेदी है कोई नपुंसक वेदी है, और जो वेद से रहित है उदय रहित तो अपगत वेदी कहते हैं उनको, तो यहाँ बताएंगे अभी। वेदाणु आदिण इत्थि वेदा केवचिरम कालादो होती, वेद मार्गणानुसार जीव स्त्री वेदी कितने काल तक रहते हैं यह सूत्र सुगम है। बोलते अब यहाँ जघन्य न एक समो, जघन्य से एक समय तक जीव स्त्री वेदी रहते, ब्रह्मा आप बोलेगी अभी बाकी शांति रखो। एक समय कैसा होगा, कोई एक समय के लिए स्त्री वेद में उत्पन्न हुआ फिर पुरुष वेद में गया क्या? हाँ उपशम श्रेणी चढ़ते हुए क्या होता है, नौवे गुण स्थान में अपगत वेदी हुआ, फिर अपगत वेदी होकर फिर नीचे आया, तो फिर पहले नौवे गुण स्थान के उतरते हुए लास्ट में, यानी जिसको हम पहला भाग कहेंगे, तो वहाँ आते ही उसके उसका स्त्री वेद फिर शुरू हुआ और मर गया। अब श्रेणी में मरने वाले देव में पुरुष होकर जन्मेंगे तो उनका स्त्री वेद का एक समय घटित हुआ, ख्याल में आई बात? पुरुष वेद में ऐसा नहीं होगा एक समय घटित, क्यों? क्योंकि पुरुष वेद में आया तो वहां पर भी पुरुष वेद ही हो गया, ख्याल में आई बात? उसका तो जो पुरुष वेद का एक छोटा जन्म लेना पड़ेगा तभी उसका घन्य काल होगा उसका। हाँ स्त्री वेदी, ये भाव से स्त्री वेदी, भाव से स्त्री है, द्रव्य से पुरुष है, शरीर की अपेक्षा वो पुरुष ही है, मिराज है, उनके तीनों वेद हो सकते हैं, किसी के नपुंसक वेद, किसी के पुरुष वेद और किसी के स्त्री वेद। भाव से यहाँ भाव की बात लेना है, जब वेद मार्गणा में देखो जघन्य से एक समय तक जीव स्त्री वेदी रहते हैं क्योंकि उपशम श्रेणी से उतर कर सवेद अर्थात स्त्री वेदी होकर द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर पुरुष वेद से परिणत हुए जीव के, अभी वो विग्रह गति में जाओ या डायरेक्ट देव में जाओ उसका पुरुष वेद का उदय चालू हो गया क्योंकि देव पर्याय शुरू हो गए उसके, और सम्यक्त्व के साथ यानी श्रेणी में मरने वाले हैं तो सम्यक्त्व के साथ जो उत्पन्न होता है वो स्त्री में नहीं होता कभी उत्पन्न, पुरुष वेद ही होता, एक समय पाया जाता है। उक्कस्येन पलिदवम सदपुदत्तम उत्कृष्ट से सौ पल्योपम पृथक्त्व, पृथक्त्व यानी कुछ अनेक, और कितने अनेक सौ पल्य, यानी एक पल्य दो पल्य सौ पल्य अनेक पल्य, यानी हम 900 तक भी गिन सकते हैं 900 पल्य, क्योंकि पृथक्त्व की वैल्यू 3 to 9 3 to 8 ऐसी हो जाती है, तो हम उसको 9 भी पकड़ते हैं क्योंकि नहीं तो वो तो हजार पल्य बता देते हैं ना, ये तो हजार तो नहीं है, तो हम 900 भी पल्य ले सकते हैं इसमें। काल तक जीव स्त्री वेदी रहते हैं, जीव अविवक्षित वेद से ऊपर पढ़ा ना उक्कसेन पलिदोम सदपुदत्तम, अविवक्षित वेद से यानी वो तो पुरुष वेद में से स्त्री वेद में आ गया, या नपुसक वेद में से स्त्री वेद में आ गया प्राप्त होकर और पल्योपम शत पृथक्त्व काल तक स्त्री वेदियों में ही परिभ्रमण करके यानी कौन कौन सी पर्याय में जाएगा वो देवी होगा या मनुष्यनी होगा या तीरंचनी होगा इन्हीं तीन स्त्री पर्याय में घूमता रहेगा कितने तक 900 पल्लयों तक सागर नहीं वो सागर तो पुल्य देवी पल्ल 55 इसीलिए अनेक पल्ले हो जाते हैं ना उसके बहुत बार उसको पल्लयों वाली तो देवी और वो 55 वाली तो बहुत बार नहीं होगी लगातार उसमें भी जो जहां जितने बार हो सकते उसके लिमिट लेकर वो इतना ले लेना मैंने बहुत बार वो भवनवासी और ज्योतिषियों की भी होगी ना वहां की जो छोटी आयु है वो उसको भी भोगेगी कितनी बार फिर भी सब मिलकर इससे ज्यादा नहीं होगा स्त्री वेदियों में परिभ्रमण करके पश्चात अन्य वेद को प्राप्त हुआ ये अन्य वेद को प्राप्त कराना है क्योंकि इतने काल के बाद नियम से अन्य वेद होगा ही जब ये देवलाली में हमने ये बात की थी वहां पर तो एक वहां की एक महिला वाशिंग वाले को दौड़कर आई तो चार उनमें यही बात होती कि स्त्री वेद का छेद करना स्त्री वेद का छेद करना उनको ऐसा लगता है कि वो तो छेद करना नहीं सम्यक तो हुए भी ना किसी को पुरुष वेद होता ही नहीं ऐसा नहीं है अरे अनादि से कभी पुरुष वेदी हो कभी पुरुष हुआ कभी स्त्री हुआ कभी नपुंसक हुआ है तो इसमें चेंज होता ही रहता है उसके लिए पुरुष होने के लिए कुछ सम्यक तो प्राप्त होना चाहिए कहाँ की बात आई ये कोई ऐसा नहीं कि पुरुष हमेशा पुरुष ही होता रहेगा ऐसा कुछ नहीं मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताई हो सकता है कि स्त्री का भव किया और अन्य वेद में चला गया ये भी हो सकता है क्या स्त्री हाँ भोगभूमि की भी होगी पर वहां से फिर भवनवासियों में चली जाएगी फिर भी वो एक पल्ले हो जाएंगे ना या दो तीन पल्ले हुआ उसके बदले ये वो उसको भी इंक्लूड करना बीच में कभी कभी गए होंगे ना उसमें क्योंकि यहाँ कर्मभूमि की स्त्री मनुष्य तीर्यंच उसने भोगभूमि की आयु बांधी वहां तीन पल्ले तो रही वहां से भवनवासी अंतर में गई फिर मनुष्य तीर्यंच में आकर फिर ऊपर भी जा सकती देवी में तो शंका शत पृथक्त्व किसे कहते हैं यहाँ लिखा है देखो 300 से लेकर 900 तक ये सब विकल्प शत पृथक्त्व कहे जाते हैं यानी मैक्सिमम 900 पल्ले तक स्त्री वेद में रह सकता है पुरुष वेदा केवल चिरम काला दो हुंदी जीव पुरुष वेदी कितने काल तक रहते हैं स्त्री वेद में कितना देखा था हमने एक समय पुरुष वेद में होगा क्या एक समय नहीं हो सकता क्योंकि श्रेणी में मरेंगे तो भी पुरुष में जन्मेंगे हाँ तो यहाँ कितना लिखते हैं देखो यह सूत्र सुगम है जघन्य न अंतमोत्तम जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक जीव पुरुष वेदी रहते हैं यानी वो पुरुष वेद का एक छोटा भोग किया उसने अन्य वेद से आया एक भोग करके फिर चला गया अच्छा वो जगह निकाल लिया उसने यानी अवगत वेद होकर फिर श्रेणी चढ़ा उसको लिया यहाँ पर वो जघन्य अंतर्मुत कैसे घटित होता है तो दो बार उपशर्म श्रेणी चढ़ाना है बीच में वो सवेद हो जाता है उसको लिया देखो पुरुष वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी होकर पुनः उपशम श्रेणी से उतरता हुआ सवेद होकर वेद का आदि करके यानी शुरुआत हुई वेद की सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल तक रहकर फिर उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपग हुआ है अपगत चाहिए अपगत वेद को प्राप्त हुए जीव के पुरुष वेद का जघन्य अंतर्मूर्त काल पाया जाता है ये समझ में आई बात क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरेगा अपगत वेदी होकर फिर सातवां छठा हजारों बार करेगा और फिर चढ़ेगा उसको लेना अब उत्कृष्ट बताएंगे उक्कसेन सागरोवम सदपुदत्तम, उत्कृष्ट से सौ सागरोपम पृथक्त्व काल तक जीव पुरुष वेदी रहते, स्त्रियों में पलिदोवम सदपुदत्तम ने यानी पल्योपम सौ पल्य पृथक्त्व लिया, यहाँ सौ सागरोपम पृथक्त्व लिया तो उत्कृष्ट से सौ सागरोपम पृथक्त्व काल तक जीव पुरुष वेदी रहते हैं। नपुंसक वेद में, वो नपुंसक हुआ है, नपुंसक वेद में अनंत काल अथवा असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहकर, देखो ये कंडीशन क्यों डाली है, लंबा काल अन्य वेद में रहकर आया है। अब पुरुष वेद का काल है तो सौ पल्ल्य सौ सागर पृथक, तो स्त्री वेद में लंबा काल वाला नहीं लिया क्योंकि स्त्री वेद का काल उससे छोटा है। अब मैक्सिमम बार इसको पुरुष वेद में रखना है तो उसके लिए नपुंसक वेद में इससे बड़ा काल बिता कर आया है। तो वहां कहते हैं नपुंसक वेद में अनंत काल अथवा असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहकर, ये कंडीशन डाली उन्होंने। मैंने एकाधी भाव उसका पुरुष वेदी था, फिर स्त्री वेद का एक भाव करके फिर लगातार इतने पुरुष वेद में रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो नपुंसक वेद में अनंत काल अथवा असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहकर पुरुष वेद को प्राप्त होकर और उसे न छोड़कर सौ सागरोपम पृथक्त्व काल तक उसमें ही परिभ्रमण करके अन्य वेद को प्राप्त हुए जीव के यह सूत्रोक्त काल पाया जाता है। ये कंडीशन लगाई क्योंकि केवली के ज्ञान में जो आया वो तो बताएंगे जरूर, हमें लगता है ना क्या हर जाए उसमें, अन्य एक ही भाव करके आए उसमें क्या हो जाता है। तो जैसे इस त्रसों की भी उत्कृष्ट स्थिति बताई जाती है ना, तो एक इंद्रिय में लंबा काल बिता कर आता है उसी को त्रस की उत्कृष्ट स्थिति मिलती है, या ऐसे कुछ विशेष नियम बताए जाते हैं। यहाँ 900 सागरोपम शत पृथक्त्व से ग्रहण किए गए हैं। मैंने डायरेक्ट उन्होंने 900 बता दिया। नौ से वेदा के चिरम काला दहुंती, जीव नपुंसक वेदी कितने काल तक रहते हैं। देखो यहाँ पर भी श्रेणी से उतरने वाले जैसे स्त्री वेदे में देखा ऐसा है। तो मनीषा बेन आप बताना नपुंसक वेद में जीव मैक्सिमम कितने काल तक रहेगा। स्त्री वेदी में देखा था हमने सौ पल्ल्य पृथक्त्व, पुरुष वेदी में सौ सागर पृथक्त्व, नपुंसक वेद में अनंत काल, एकेंद्रियों में एकेंद्रिय सारे नपुंसक वेदी होते हैं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन उसमें कह दो, है ना, ख्याल में आए ना बात। तो यहां देखते हैं जघन्य ने ये समूह जीव नपुंसक वेदी कितने काल तक रहते, तो जघन्य से एक समय तक जीव नपुंसक वेदी रहते क्योंकि नपुंसक वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़कर फिर उतरकर सवेद होकर और द्वितीय समय में मरकर पुरुष वेद को प्राप्त हुए जीव के नपुंसक वेद का जघन्य से एक समय काल देखा जाता है। जिसको जो वेद है उसके पूरे लाइफ टाइम में वही रहेगा, तो चढ़ते समय अन्य है, अभी उतरते समय अन्य हो गया क्योंकि विशुद्धि बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है कभी, समझ में आएगा। उसका एक भाव में वही वेद रहेगा, अपगत वेद हो सकता है पर वेद तो वही, जब उदय है तो वही वेद रहेगा। शंका, पुरुष वेद का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि स्त्री वेद का भी बताया ना, पुस्तक वेद का भी बताया। समाधान, नहीं, क्योंकि अपगत वेद होकर और सवेद होने के द्वितीय समय में मरकर देवों में उत्पन्न होने पर भी पुरुष वेद को छोड़कर अन्य वेद के उदय का अभाव होने से एक समय काल नहीं पाया जाता। तो सम्यक्त्व के साथ तो पुरुष वेदी होगा, हाँ, वो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ नरक में जाने वाला वो नपुंसक वेदी है क्योंकि वहां अन्य वेद होता ही नहीं है, परंतु अन्यथा वो पुरुष वेद के साथ ही जन्म लेता है।
लेकिन श्रेणी चढ़ने वाले नरक में नहीं
जाते। नहीं, उसकी बात नहीं, मैंने जनरल बात कही। श्रेणी चढ़ने वाले के पांचवें गुणस्थान वाले भी नहीं जाते, क्योंकि जिसने नरकायु बांधी हो, नरकायु की बात भी छोड़ो, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु किसी का भी बंध हुआ हो, तो उसको पांचवा गुणस्थान भी नहीं होता, श्रेणी की बात छोड़ दो, ये नियम है। हाँ, ये अबद्धायु होगा तो हो सकता है श्रेणी चढ़ के उतरा, बाद में कालांतर से मिथ्यात्व में गया, फिर मर कर गया, वो बात अलग है, वो कालांतर की बात है। तो कहते उक्कस्य न अनंत कालम असंख्यज्ज पोगल परियट्टम, उत्कृष्ट से अनंत काल तक जीव नपुसक वेदी रहते हैं, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि अविवक्षित वेद से नपुसक वेद को प्राप्त होकर और आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन न रह गया काल तक परिभ्रमण करके अन्य वेद को प्राप्त हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। मान लेते हैं ना, अभी स्त्री वेद में से या पुरुष वेद में से वो आ गया उसमें और इतना काल बीता इसमें, हो सकता है यहाँ एक केंद्रीय में जाने के पहले भी उसने नपुसक वेद का ही तिरंच या मनुष्य का भोग किया था और फिर वो एक केंद्रीय में आ गया, यानी तभी से उसका नपुसक वेद चालू हो गया, या त्रसों में रहते हुए भी नपुसक वेद तो होता है ना, वहां पर भी उसकी बात है। अवगत वेदा केव चिरम कालादो होती, जीव अपगत वेदी कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। उपशमम पड़ुच्च जहन्येन एक समो, उपशम की अपेक्षा जघन्य से एक समय तक जीव अपगत वेदी रहते, क्योंकि देखो अपगत वेद कब होता है, नवे गुणस्थान में, नवे के पहले भाग सवेद भाग है, फिर वेदों का उदय रुक जाता है, तो अवगत वेदी हुआ और एक समय में मरण हुआ, तो देव के पहले ही समय से विग्रह गति से उसका पुरुष वेद चालू हो गया। क्योंकि उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी होकर और एक समय तक रहकर द्वितीय समय में मरकर सवेद पने को प्राप्त हुए जीव के, सवेद यानी वो पुरुष वेद ही होता है, एक समय काल पाया जाता है। तो वेद का समय गिनेंगे, अपगत वेदी का अंतर्मूर्त घटित होगा, हमें मिनिमम चाहिए उसका, एक समय तक उसको रखना है। हाँ, उत्कृष्ट काल में तो पूरा बताना पड़ेगा उसको, उसमें अंतर्मूर्त बताएंगे। उक्कस से न अंतमूर्त, देखो आया ही बात, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक जीव अपगत वेदी रहते, यानी चढ़ते समय वेद का अभाव हो गया, यानी वेद का उदय मिट गया, उतरते समय नवे में आ गए, लास्ट में सवेद भाग में पहुंच गए, वेद का उदय शुरू हुआ, तो अंतर्मूर्त घटित होगा। इन्हें उपशम की अपेक्षा एक समय से लेकर अंतर्मूर्त बताया। अब कहते खवगम पड़ुच्च जघन्य न अंतोमोत्तम, शपक की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक अपगत वेदी रहते हैं। ये अंतर्मूर्त कहाँ पर? अच्छा, देखो आपका अच्छा प्रश्न है, यहाँ क्या लिखा, स्त्री वेद के उदय से या नपुसक वेद के उदय से, मैंने भी वो पढ़ा मगर वो मैं भूल गई बताना, उपशम श्रेणी पर चढ़कर, आपका प्रश्न है पुरुष वेद के उदय से क्यों नहीं कहा, कि देखो हमने देखे थे श्रेणी की बात अपनी छठी पुस्तक में हुई थी, जो पुरुष वेद के उदय से जो चल रहा है ना, तो वो पहले क्या करता है, नपुसक वेद की उपशमना करता है, फिर स्त्री वेद की करता है, पूरी हो गई, फिर पुरुष वेद का उदय रहते हुए पुरुष वेद और छह नौकशाएं की उपशमना करता है। अब जो स्त्री वेदी है वो क्या करता है, जितना काल में पुरुष वेदी ने नपुसक वेद की उपशमना की उसने भी की, उसके बाद उसने स्त्री वेद का उदय होते हुए स्त्री वेद की भी उपशमना की, अब उसका उदय मिट गया तो वो जल्दी अवगत वेदी हो जाते हैं, बाद में उनका पुरुष वेद और चेनो कषाय उनका उपशम एट अ टाइम चालू हो गया। नपुसक वेदी ने क्या किया, नपुसक वेदी की जितना दोनों ने की तब तक तो की, पर उसकी उपशम ना कम्प्लीट नहीं हुए, फिर श्रीवेद और नपुसक वेद के एट अ टाइम उपशमना चालू की, उसका भी उदय, जहां श्रीवेद का उदय मिटता है वहां उसका भी उदय मिट गया। यानी पुरुष वेद का उदय लंबे काल तक, यानी अंतर्मूर्त अधिक चलता है जहाँ नहीं अपगत वेद एक साथ नहीं होता, पुरुष वेदी डिले यानी लेट होता है अपगत वेदी, और उसका उदय भी जल्दी चालू हो जाएगा। यानी स्त्री वेद या नपुसक वेद सही चढ़ने वाले जल्दी अपगत वेदी हो जाते हैं। क्योंकि पुरुष वेद का उदय छह नौकशाम के साथ वो उपशमने में वो चलता रहता है, या पुरुष वेद का उदय अधिक काल तक चलता है, अंतर्मूर्त अधिक काल तक चलता है। छ नौकशाएं का उपशम हो रहा है ना उसका पुरुष वेद सहित, उस वहां तक उसका, हाँ उसका उदय है। आगे खवगम पड़ुच्च जहन्य अंतमूर्तम, क्षपक की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक अपगत वेदी रहते हैं। तो कितना काल तक रहेगा अंतर्मूर्त, यानी कैसे घटित होगा उसमें, एक समय तो नहीं घटित होता क्योंकि वो हमर नहीं है। अंतर्मूर्त गिनाओ, नवे गुण स्थान में अपगत वेदी हो गए, गिनाओ भी जघन्य काल गिनाओ ना। क्यों इतने क्यों प्रश्न, अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त कराओ नहीं समझे, तेरहवे गुणस्थान का लंबा काल लेंगे तो उसको अधिक काल तक रखना पड़ेगा ना अंतर्मूर्त में तेरवा पार करने वाले जीव को देना यहाँ पर। फिर से देखो, क्योंकि क्षपक श्रेणी पर चढ़कर और अवगत वेदी होकर सर्व जघन्य काल से मुक्ति को प्राप्त हुए जीव के से नहीं के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। ऐसे सिद्ध भी अपगत वेदी, परंतु वहां तो वेदों का सवाल ही नहीं है ना, हाँ ये संसारी जीवों में ही घटित करना है। एक सौ साठ पेज पर अब उत्कृष्ट कितना होगा, अभी पूर्व कोटि का भाव लेना है हाँ, और जल्दी संयम धारण करके शपथ श्रेणी चढ़ाना है, बाकी उर्वरित काल अपगत वेदी रहेंगे। तो उक्कस से न पूर्व कोटि देशुनम, उत्कृष्ट से कुछ कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक जीव अपगत वेदी रहते हैं। क्योंकि देव और नार की शायिक समय दृष्टि के पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर, देखो क्षायिक समय दृष्टि लिया तो क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य में कहां से आएगा, ये पहले प्रश्न है, कौन से भवन से आएगा क्षायिक वाला भूमि में जा सकता है मनुष्य से, पर फिर देव में जाकर भी मनुष्य में आएगा ना, कोई मनुष्य से क्षायिक लेकर मनुष्य में उत्पन्न नहीं होगा, दीर्घ च क्षायिक मनुष्य में उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का उत्पन्न होता है कर्म भूमि में, बाद में आयु बांधेगा तो देव की बांधेगा, पहले आयु नरक की बांधी होगी तो जैसे श्रेणी की ने बांधी थी वो नरक में से यहाँ आएगा, क्षायिक के साथ लाना है। क्यों क्षायिक के साथ, यदि क्षायिक के साथ नहीं आता, क्षोभ्रम के साथ आता तो आठ वर्ष के बाद फिर उसको दशम मुनि की क्षपणा में एक अंतर्मूर्त और बिताना पड़ता, और बाद में क्षपक श्रेणी चढ़ता था, इसलिए रेडीमेड क्षायिक के साथ लाया। अभी क्षायिक समय दृष्टि, हाँ, इसलिए वो क्षायिक पहले से क्षव श्रमिक अगर सम्यक के साथ आया है तो कोई मिथ्यात्व के साथ भी आ सकता है, इसलिए ये सब कंडीशन डाली। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए उसके फिर और ज्यादा टाइम समय लगेगा, फिर क्षव श्रमिक फिर क्षायिक वगैरह। अभी इसलिए क्षायिक वाला पहले लिया, पूर्व भव में उसने क्षायिक करके फिर देव या नरक का भोग करके यहाँ आया है। अभी आठवें साल के बाद डायरेक्ट संयम धारण करेगा वो, और संयम धारण करके एक अंतर्मूर्त में श्रेणी भी चढ़ेगा, यानी उसका बाकी सब काल अंतर्मूर्त और आठ वर्ष समझो ना उसको, बाकी काल कहाँ मैक्सिमम बिताएगा, तेरहवें में, क्योंकि चौदहवें का काल एक लघु अंतर्मूर्त छोड़ देना है, और इसको छोड़ देना मुझे क्यों, तेरहवें की काल गिनने के लिए, परंतु अभी हमको तेरहवा चौदह सब गिनो ना, क्योंकि अपगत वेदी रखना है उसको, इसलिए हम केवल पहले का छोड़ना है। देखो फिर से पढ़ते इसको, क्योंकि देव और नार की क्षायिक समय दृष्टि के एक एक शब्द क्यों डाला है उस पर विचार करना, और देव और नार की क्यों लिखा, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि कंडीशन थी। पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर हमको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है, इसलिए पूरी आयु लेकर आया है। आठ वर्ष बिताकर संयम को प्राप्त कर सर्व जघन्य काल से क्षपक श्रेणी पर चढ़कर, क्योंकि छठे सातवें में ज्यादा समय नहीं बिताया, जल्दी चल गया, क्षपक श्रेणी का काल सबके लिए सेम है। अपगत वेदी होकर केवल ज्ञान को उत्पन्न कर, और कुछ कम पूर्व कोटि तक विहार करके अबंधक अवस्था को प्राप्त हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक विहार करके लिखा ना, क्योंकि अभी तेरहवें गुणस्थान में इतना समय लगे रहेगा, विहार उनका चलेगा, इसलिए विहार करके लिखा। सामान्य केवली के भी विहार तो होते हैं। कषायणु, अभी कषाय अनुवाद की, कषाय मार्गणा की बात चलेगी, वेद की होगी ना, अब कषाय के कषायणु वादेन, कोध कसाई, मान कसाई, माय कसाई, लोभ कसाई, केवचिरम कालादो हो दी। कषाय मार्गणा अनुसार जीव क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई और लोभ कषाई कब तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। ये पहले माया कसाई आया था कि माया कसाई आया था, स्वामित्व वाला अनुयोग था, माया कसाई था 82 पेज पर, माया कसाई वहाँ स्वामित्व में भी थे ना, ऐसे ही सूत्र थे, यह काल की बात, वहाँ कदम भवती ऐसा शब्द था।
तीर्थंकर का विहार कितने क्षेत्र में हो सकते हैं,
यथा योग्य जो उनका होगा।
नहीं, भरत भूमि में चौथे काल में जो तीर्थंकर हुए हैं वो भरत भूमि में ही, कि उनका
वो तो विधेय क्षेत्र में तो जाएंगे नहीं, अपना अपना एरिया छोड़कर अन्यत्र तो नहीं जाते, वो तो नियम है ना, भरत क्षेत्र में होगा। जैसे विधेय वाले एक विधेय के भी दूसरे विधेय में नहीं जाते, आर्यखंड छोड़कर मलेंच में नहीं जाएंगे। हाँ देखो, कषाय मार्गणा के अनुसार जीव क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय कब तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समो, जघन्य से एक समय तक जीव क्रोध कषाय आदि रहता है। कैसे होगा एक समय में, मरण के समय वो कषाय पलटती रहती ना, जैसे हमने योग में देखा था, मरण की अपेक्षा तो होगा ही नहीं, और व्याघात की अपेक्षा अन्य तीन में ही लेंगे, क्रोध में नहीं लेंगे, क्योंकि व्याघात होकर वो क्रोध में आ जाता है, वो बताएंगे अभी। तो क्रोध कषाय आदि रहता है क्योंकि अविवक्षित कषाय से क्रोध कषाय को प्राप्त होकर एक समय रहकर और फिर मरकर नरक गति को छोड़ अन्य गतियों में उत्पन्न हुए जीव के। देखो क्योंकि ये ऐसा है ना, प्रत्येक गति में पहले समय में कौन सा कषाय है उसके प्ररूपण आता है, और किसी का कहना है कोई भी कषाय हो सकती है, दोनों भी मत है। अब यहाँ नरक गति क्योंकि वहां तो क्रोध का उदय है शुरुआत में, बाद में उनमें भी क्रोध मान माया लोभ सब पलट कर होते ही है नियम से। उस जीव के एक समय पाया जाता है, क्रोध के व्याघात से एक समय नहीं पाया जाता, ये महत्व की बात है। जैसे योगों में हमने व्याघात होकर काय योग में लौट आता है, ऐसे अन्य कषाय से व्याघात होकर एक समय में क्रोध में लौट आ सकता है, पर क्रोध में ऐसा व्याघात से एक समय नहीं होगा। समझ में आई तेरी बात? क्योंकि व्याघात को प्राप्त होने पर भी पुनः क्रोध की ही उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शेष तीन कषायों के भी एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेष इतना है कि इन तीन कषायों के व्याघात से भी एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। यानी मान माया या लोभ शुरू हो गया और एक समय में लौटकर क्रोध में आ गया, ये हो सकता है। मरण की अपेक्षा एक समय कहने पर मान की मनुष्य गति, माया की तिर्यंज गति और लोभ की देव गति को छोड़कर शेष तीन गतियों में जीव को उत्पन्न कराना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? देखो अभी क्रोध के लिए नरक गति छोड़कर, क्योंकि यहाँ क्रोध में एक समय मरा तो वहां पर क्रोध ही शुरू रहा, तो क्रोध में था एक समय में मरकर देव हुआ तो लोभ चालू हो गया, तो क्रोध का एक समय घटित हुआ। अब मान के लिए मनुष्य गति को छोड़कर अन्य तीन गतियों में पैदा करना, मनुष्यों में मान की मान ही रहता है, कोई मान के साथ देव मर गया और मनुष्य में आया तो उसका मान का मान चालू रह गया। नरक गति में चालू रहता है, अन्यत्र नहीं, इसलिए नरक गति को छोड़कर कहा था। मान के लिए मनुष्य गति को छोड़कर अन्य तीन गतियों में उत्पन्न कराना है, माया के लिए चिरंज गति छोड़कर अन्य तीन गतियों में, क्योंकि उस गति में उस कषाय की पहले शुरुआत उससे होती है, और लोभ के लिए देव गति को छोड़कर शेष तीन गतियों में जीव को उत्पन्न कराना चाहिए। ये समझ में है ना बात? कारण कि नरक मनुष्य तिर्यंच और देव गतियों में उत्पन्न हुए जीवों के प्रथम समय में यथाक्रम से क्रोध मान माया और लोभ का उदय देखा जाता है। नरक मनुष्य तिर्यंच और देव अब उत्कृष्ट कितने काल तक क्रोध रह सकता है? आपका कितने काल तक रहता है क्रोध? दो चार घंटे, दो चार दिन, साल, दो साल, दस मिनट? अब चलिए बोलिए। देखो उत्कृष्ट से ना अंतर्मुहूर्तम, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव क्रोध कषाय आदि रहता है, क्योंकि अविवक्षित कषाय से विवक्षित कषाय को प्राप्त होकर उत्कृष्ट काल तक वहीं स्थित हुए भी जीव के अंतर्मुहूर्त से अधिक काल नहीं पाया जाता। और ये अंतर्मुहूर्त भी छोटा है, बीच में अन्य अन्य भी क्रोध चलते हुए भी हम कहते हैं वो तो भी मान के कारण भी आया है, किस कारण आया है, उसमें भी मायाचारी क्रोध होते होते मायाचारी के परिणाम भी हो गए कि नहीं हो गए, बीच में होते रहते हैं वो अंतर्मुहूर्त, छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त होते हैं। अंतर्मुहूर्त अभी अंतर्मुहूर्त यथा योग्य हो सकता है जघन्य उसे उत्कृष्ट, हाँ, पर अंतर्मुहूर्त ही कहना उसको। जो सालों तक किसी पर्टिकुलर के प्रति जो क्रोध हुआ है उसके हम क्षमारूप नहीं प्रवर्तते, उसको उसका वो अवासना काल कहते, वो बात जुदी है, पर कंटिन्यूअसली एक ही कषाय में जीव कायम नहीं रह रहा है। अब अकषाय के यथायोग्य, हाँ, अब केवल गम्य, केवल ज्ञानी गम्य। अकसाई अवगद वेद भंगो, अकसाई जीवों का काल अपगत वेदियों के समान है। ये जब आगे चलकर महाबंध में या यहाँ कहीं इसमें आएगी बात नहीं, परंतु हम उसमें क्या कहते, कोई एक मार्गणा लेते थे क्रोध कषाय है, तो क्रोध कषाय के रहते हुए वो किसी प्रकृति का बंध होकर वापस उसमें आता है कि नहीं, अंतर देखते हैं क्रोध कषाय में, साता वेदनी का अंतर या असाता का अंतर या आयुबंध का अंतर इस तरह से घटित करते हैं, तो उसमें ये बात पता चलती है कि वो अंतर इतना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर भी वो बात निर्भर है। यानी साता हुआ फिर अंतर्मूर्तक असाता बांध की, फिर साता अंतर्मूर्तक बांधे कि इतना लंबा काल हो सकता है, उस पर से वो अंतर्मूर्त कितने बड़े हैं वो हम घटित कर सकते हैं। वो हमने किया था महाबंध में, अभी तो हम ये तो पहले में पहले उसकी एक एक मार्गणा का काल बता रहे, काल अंतर, फिर उसमें फिर बंध की बात बाद में आ जाएगी। अकसाई अवगद वेद भंगो, अकसाई जीवों का काल अपगत वेदियों के समान है। देखो अकसाई कब होगा, पूरा अकसाई दसवें में, लोभ कसाई है ग्यारहवें में, तो ग्यारहवें में गया और एक समय में मरा तो देव में चला जाएगा, तो वहां तो कसाई का उदय चालू हो गया, तो अकसाई कितने काल तक रहा, एक समय के लिए, समझ में आई बात। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, और फिर वो उसको वो आठवें साल में क्षपक श्रेणी चढ़ाकर बारहवें गुणस्थान में डाल दो ना उसको, ख्याल में आई बात। देखो अभी यहाँ से हमने पढ़ा नहीं, पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं। देखो इसलिए उन्होंने क्या कहा, अकसाई जीवों का काल अपगत वेदियों के समान है, यानी जघन्य एक समय उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि यहाँ पर भी घटित होता है। जिस प्रकार, तो मेरा ये प्रश्न है, क्रोध कषाय सहित चढ़ने वाला या मान या माया या लोभ सहित चढ़ने वाला, अपगत वेदी, जैसे हमने अपगत वेदी जल्दी होते हैं स्त्री नपुसक वेद वाले, तो ऐसे अकसाई वाले कभी कब हो गया अकसाई, कौन से कषाय के साथ चढ़ने वाले जल्दी अकसाई हो गए। अरे सबका सूक्ष्म लोभ तो है ना दसवें में, सबका सूक्ष्म लोभ तो है ना, भले वो क्रोध से मान, मान से माया, क्रोध कषाई छोटा काल में है, फिर मान माया हो ही जाता है, वो अकसाई नहीं होता है। किसी भी कषाय से चढ़े तो दसवें में जाके सूक्ष्म लोभ वाला हो ही जाएगा। देखो हम ऐसा विचार करते हैं तो अनेक अपेक्षा हमारे ख्याल में आती है ना। हाँ देखो, अकसाई जीवों का काल अपगत वेदियों के समान है। जिस प्रकार अपगत वेदियों के उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से जघन्य से एक समय व अंतर्मूर्त काल की प्ररूपणा तथा उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त व कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण काल की प्ररूपणा की है, यानी उसमें भी उन्होंने उपशम की अपेक्षा एक समय और अंतर्मूर्त बताया, और क्षपक की अपेक्षा कुछ कम, एक समय नहीं, हाँ तो कुछ कम पूर्व कोटि बताए थे। उसी प्रकार अकसाई जीवों की भी जघन्य और उत्कृष्ट से काल प्ररूपणा करनी चाहिए, यह उक्त सूत्र का अर्थ है। अपगत वेदी में नवे गुणस्थान में अपगत वेद होकर मरना चाहिए उसको, तब वो वेदचर हो जाएगा, और इसके ग्यारहवें गुणस्थान में जाकर, हाँ ये कषाय मार्गना हो गई। अब नानानुवादेन मदीअन्नानि सुदान्नानि केवचिरं कालादोहोदि, ज्ञान मार्गानुसार जीव मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी कितने काल तक रहता है, ब्रह्मा बताएंगे मिनिमम कितने काल तक जीव मत्य ज्ञानी यानी मति अज्ञानी रहता है जघन्य से। हाँ सम्यक तो से मिथ्यात्व में आ गया और फिर सम्यक तो प्राप्त अंतर्मूर्त, हाँ, और उत्कृष्ट से कितना आनंद, उसमें हम शादी शांत काल कहना है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन कहना पड़ेगा, क्योंकि मति अज्ञानी ला उसको स्टार्टिंग बताना है ना, जैसे हमने पुरुष वेदी की बात की, अन्य वेद से उसमें लाना है, वैसे मति ज्ञान से उसको मति अज्ञानी करना है। ऐसा करेंगे तो अर्ध पुद्गल होगा, कुछ कम। देखो यहाँ क्या लिखते देखेंगे, हाँ मिथ्या तो और साधन दोनों, मति ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी भी हो सकता है कोई। देखो इसका उत्तर हम आगे के पेज पर देखते हैं, 162। यह सूत्र सुगम है, अभी उसमें भंग बताया अलग अलग। अनादियो अपज्य वसिदो, मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों का काल अनादि अनंत है, तीन बताएंगे। अनादि अनंत, हाँ सादी शांत, अनादि शांत और सादी शांत। तो जो अनादि अनंत है, यह निर्देश यानी यह कथन अभव्य अथवा अभव्य समान भव्य जीव की अपेक्षा किया गया है। अभव्य समान भव्यम लिखा है ना, उसका अर्थ क्या, अभव्य समान भव्य, जो कभी मोक्ष नहीं जाने वाले तीन काल में। अनादि अनंत बताए उसका अर्थ क्या है भव्य, ऐसा कभी नहीं होगा सभी भव्य चले गए और कुछ अभव्य, खाली अभव्य ही बाकी रहेगी, ऐसा कभी होगा क्या इस विश्व में? भव्य रहेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि अकेले अभव्य रहेंगे और भव्य सब चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। भव्यों में से कुछ चले जाएंगे मोक्ष, उन कुछ भव्य ऐसे है जिनका अनादि अनंत काल है। अभव्य समान भव्य को भी ले गया उसमें। अनादियो सपज्यवसी, देखो पर्यवसान है नहीं उसका अंत, अनादि अनादि है, सपज्यवस यानी शांत, अनादि शांत जिसको कहेंगे। पहला कौन सा लिया उन्होंने, अनादि अनंत। अब कहते उक्त दोनों अज्ञानियों का काल अनादि शांत है, अनादि से था जब सम्यक तो हुआ तो वो मिट गया। यह निर्देश भव्य जीव की अपेक्षा से किया गया है, वो तो बाद में बताएंगे। 134वां पढ़ा मैंने, 135 में सादियो सपज्जवसिदो, उक्त दोनों अज्ञानियों का काल सादी शांत है। यह निर्देश ज्ञान से अज्ञान को प्राप्त हुए भव्य जीव की अपेक्षा किया गया है, यानी सम्यक दृष्टि था वो मिथ्या दृष्टि हुआ है। अब यहाँ मत्य ज्ञान की प्ररूपना है, इसलिए ज्ञान से अज्ञान कहा, क्योंकि जो ज्ञानी हुआ था नहीं समय वो भव्य था इतना क्यों हुआ, अब वही अज्ञानी हुआ है। अब यहाँ तो ये सादी शांत काल की प्ररूपना करेंगे। जो सो सादियो सपज्जवसी दो तस्स इमो निर्देशो जहन्ने न अंतमोत्तम, जो वह सादी शांत काल है उसका ये निर्देश इस प्रकार है, जघन्य से अंतर्मूर्त काल है। समझ में, पहले तीन विकल्प बताए उसमें से सादी शांति की बात बता रहे, क्योंकि समय दृष्टि जीव के मिथ्यात्व को प्राप्त होकर मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान को प्राप्त कर एवं सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर सम्यक्त को प्राप्त होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने वाले के जघन्य काल पाया जाता है। उक्कसेन अद्धपोगल पर्यट्टम देशुनम, उक्त जीव उत्कृष्ट से, उत्त लगाना क्रू का, उक्रू हो गया, उत्कृष्ट से कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी रहता है, क्योंकि जिस समय से उसने समय दर्शन प्राप्त किया उस समय से अर्धपुद्गल में मोक्ष होता है। अभी इसने एक मान लेते अंतर्मूर्त तक सम्यक दृष्टि रहा था, फिर मिथ्या तो में आए तो वहां अंतर्मूर्त गिनना, और फिर लास्ट भव में जब उसको सम्यक तो हो जाएगा, फिर सम्यक तो होगा, संयमी होगा, फिर श्रेणी चढ़ेगा, वो सब उसमें से माइनस कर देना, तो कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन का। एक सौ 163 पेज पर आते हैं, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के बाहर तीनों ही कर्णों को करके पुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में उपशम सम्यक्त को ग्रहण कर नहीं नहीं पुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में उपशम सम्यक्त को ग्रहण कर पुद्गल परिवर्तन को गिनेंगे ना, उसमें से आधा काल गिनेंगे, यानी उसका सम्यक तो प्राप्त किया तब से हमने वो काउंट करना शुरू हुआ। अगर वो सम्यक्ति नहीं होता तो उसका पुद्गल परिवर्तन शुरू हुआ है, शुरू होने में क्या हर्जा है, क्योंकि उसके अनादि से चल रहा था। जिस समय हम ऐसा लेते हैं कि जिस समय उसने सम्यक तो प्राप्त किया उस समय से पुद्गल परिवर्तन का काल गिनना शुरू करेंगे। अभिनिबोधि कोष्ठ तक ज्ञान को प्राप्त करके और सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक रहकर उपशम सम्यक्त में छह अवलियां शेष रहने पर सासादन सम्यक्त को प्राप्त होकर, अभी उपशम में भी पूरा नहीं रहा, छह अवली पहले सासादन में आया तो उसका मत्य ज्ञान चालू हो गया। हमको मति अज्ञान का मैक्सिमम काल गिनना है, मति और श्रुता अज्ञान का आदि करके, यानी मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान प्रारंभ हो गए, मिथ्यात्व को प्राप्त हो, कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक भ्रमण करके, यानी क्योंकि हमने सम्यक तो प्राप्ति के समय से पुद्गल परिवर्तन शुरू किया था गिनना, तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन में भीतर पुनः अंतिम भव में मति एवं श्रुत ज्ञान को उत्पन्न कर अंतर्मूर्त काल से अबंधक अवस्था को प्राप्त होने पर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल पाया जाता है। अबंधक अवस्था कब होगी, मोक्ष हो गया उसका, अभी अयोगी में भी अबंधक कहेंगे परंतु वो अंतर्मूर्त गिनो उसमें। एग्जैक्टली समय जो वो करण का काल भी उसके पहले गिना, जिस समय समय तो उत्पन्न हुआ उस समय से गिना उन्होंने। विभंगनानी केवल चिरम काला दो दी जी, विभंग ज्ञानी कितने काल तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्य न एक समो, जघन्य से एक समय तक जीव विभंग ज्ञानी रहता है। ब्रह्मा आप सोच सकते हैं एक समय कैसे होगा, आपको पता नहीं कैसा होता है। बहुत अच्छा, देखो देखो उपशम समय तो प्राप्त हुआ देव और नारके उनके, तो वहाँ नियम से वहाँ तो ज्ञान यानी अवधि ज्ञान होता ही है, मिथ्या दृष्टि को विभंग ज्ञान और सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान, यानी तीसरे चौथे को अवधि ज्ञान, पहले दूसरे को तीसरे को मिश्र कहेंगे परंतु पहले दूसरे को विभंग ज्ञान दोनों को, तो औपशमिक सम्यक तो हुआ यानी उसको अवधि ज्ञान था, अभी वो सासाधन में आ गया तो एक समय में मरण हुआ, तो एक समय के लिए उसका विभंग ज्ञान रहा, अभी मर गया तो विभंग ज्ञान तो दूसरे भव में जाता नहीं है, तो मिट गया उसका, एक समय तक रहा। तो जघन्य से एक समय तक जीव विभंग ज्ञानी रहता है, ऊपर नहीं जघन्य ने एक समय, क्योंकि देव अथवा नारकी उपशम सम्यक दृष्टि के उपशम सम्यक्त के काल में एक समय शेष रहने पर सासाधन सम्यक्त को प्राप्त होकर और विभंग ज्ञान के साथ एक समय रहकर द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होने पर यह सूत्रोक्त काल पाया जाता है। समझ में आई बात, सासाधन हुआ तो उसका अवधि ज्ञान है वो विभंग ज्ञान में टर्न हो जाएगा। अब उत्कृष्ट बता रहे उपकसेन 33 सागरोपमानी देशुनाने, विभंग ज्ञान की बात पूछ रहे हैं इसलिए उत्कृष्ट से कुछ कम 33 सागरोपम काल तक जीव विभंग ज्ञानी रहता है। ये कुछ कम क्यों कहा, पर्याप्त हुए बिना विभंग ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, वो यानी पूर्व भाव से चला नहीं जाता उसमें, क्योंकि मनुष्य तीर्यन जो उनका विभंग ज्ञान होता है अंतर्मूर्त का, ये अंतर्मूर्त का होता है, हमें महाधौला में पता चला था, आपके याद होगा तो। हाँ, नहीं तो ऐसा लगता है वो विभंग ज्ञानी किसी किसी के मनुष्य को तो वो आगाही करते पहले दूसरे की, पर एट ए टाइम उसका अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा, फिर दोबारा हो सकता है उसको, यानी बारम्बार उसको, परंतु चला तो वो अंतर्मूर्त तक ही उसका रहेगा, क्योंकि वहां बात ऐसी आई थी विभंग ज्ञान में देवायु और नरकायु का कोई बंध करता है तो उसका अंतर कितना होगा, बोलो। हाँ, तो नहीं होता है, क्योंकि देवायु नरकायु किसके बनती है, मनुष्य तिरंचों के, समझ में आई बात। और वो एक बार आयु बांधने दूसरे में अर्लीस्ट कब बांधता है, तो अंतर्मूर्त में बांध सकता है, सातवें और आठवें बार की जो आयु बांधनी उसमें अंतर्मूर्त के अंतर हो सकता है, परंतु विभंग ज्ञान का काल इतना बड़ा नहीं है कि दो बार आयु का बंध हो गई उसके अंदर, तो देवायु मनुष्य के लिए अंतर नहीं बताया। हाँ, विभंग ज्ञान ये तिरियंच आयु मनुष्य आयु बांधता है उसमें अंतर हो सकता है, वो तो कुछ कम छह महीने का भी होगा ना, क्योंकि उनका विभंग ज्ञान तो चलता रहता है। इस पर हमने तब हमारे ये बात ख्याल में आई, उस पर अपने चर्चा बहुत हुई थी। अब यहाँ पढ़ लेते चार लाइन यहाँ की, 164 पेज पर, ये 33 सागर में कुछ कम क्यों कहा विभंग ज्ञान के लिए, क्योंकि 33 सागरोपम प्रमाण आयु वाले सप्तम पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होकर, ये ऊपर के क्यों सर्वार सिद्धि में क्यों नहीं, सब समय दृष्टि अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल वहां, तो उसको क्या यहाँ से ले जाएगा, तो उसको भी गिनेंगे, लेके भी आएंगे और लेके भी जाएंगे। तो यहाँ तो विभंग ज्ञान में 33 सागरोपम वाला नारकीय सप्तम पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होकर छह पर्याप्तियों को पूर्ण कर, मन पर्याप्ति पूर्ण होकर बाद में ये हो जाएगा विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञानी होकर अंतर्मूर्त कम 33 सागरोपम प्रमाण आयु स्थिति तक रहकर वहां से निकले हुए तिर्यंच अथवा मनुष्य के वह सूत्रोक्त काल पाया जाता है, वो वहां से फिर दूसरे भाव में चालू नहीं रहता है, क्योंकि किसी को भी अपर्याप्त काल में विभंग ज्ञान होता ही नहीं है, यही रुकेंगे अभी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो, मैं